نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں، نئی سورہ ہے. اس سورت کا جو نام ہے توبہ، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں مومنین کی توبہ قبول کرنے کا ذکر آیا. خاص طور پہ حضرت قاب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن الربیع رضی اللہ عنہم، ان تین صحابہ کی توبہ قبول کرنے کا ذکر آیت نمبر 118 میں آیا. اس وجہ سے اس کا مشہور نام سورہ توبہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کا نام سورہ برات بھی ہے. برات اس کا پہلا لفظ ہے جو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بری ذمہ ہو جانا، بیزار ہو جانا. تو اس صورت میں دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بیزار ہو گئے. اس صورت کے اور بھی نام ہیں، بہت سارے نام بیان کیے گئے ہیں، جیسے سورت العذاب بھی اس کا نام ہے، اس میں عذاب کی بات ہے. اس کا نام سورہ مکشقشہ یہ بھی ہے، کیونکہ کشکشہ کا لغوی معنی ہے کہ کسی شخص کو خارش یا چیچک کی بیماری سے نجات اور شفا مل جائے. تو اس میں مسلمانوں کو منافقین سے نجات دینا یہ مراد ہے، کیونکہ اس صورت میں منافقین کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں، اور جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 منافقین کو نام لے کے مسجد نبوی سے نکال دیا تھا. یہ آیت نمبر 101 میں آپ دیکھیں گے آگے جا کے. اس کا نام مبعثرہ بھی ہے، المسیرہ بھی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، اور اس صورت میں منافقین کے چھپے ہوئے حالات کو ظاہر کیا گیا ہے. اسی طرح اس کا نام المخزیہ بھی ہے، اور الفادحہ بھی ہے، کیونکہ ان کا مطلب ہوتا ہے رسوا کرنا. تو جن کی نفاق کا پردہ چاک کر دیا گیا وہ تو رسوا ہو گئے. تو اس وجہ سے اس سورت کے بہت سارے نام آپ دیکھیں گے، مگر زیادہ آپ نے دیکھا نا کہ اس کا نام سورہ توبہ یا سورہ البرات یہ زیادہ مشہور ہے. اس سورت کی جو نزول کا ٹائم ہے وہ 9 ہجری ہے. اس سورت کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ہی اتری، مطلب ایک دفعہ اترنے سے مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کے بیچ میں اور کوئی آیتیں نہیں اتری، ایک ہی دفعہ ہی اتری. بعض کہتے ہیں نہیں، مختلف اوقات کے اندر اتری تھی. اور یہ بھی ہے کہ یہ وہ کمپلیٹ سورت ہے جو آخر میں اتری ہے، کمپلیٹ سورہ. آیتیں تو اس کے بعد اترتی رہی ہیں، لیکن کمپلیٹ سورہ یہ ہے جو اینڈ میں اتری ہے. ٹھیک ہے، اس سورت کی آپ بہت زیادہ مناسبت دیکھیں گے سورہ انفال سے، یعنی اتنی زیادہ سملیرٹیز ہیں، کیونکہ دونوں میں جو بھی جہاد کے احکامات ہیں، جنگ کے قواعد ہیں، مومنوں کی، کفار اور منافقین کے حالات بیان کیے ہیں، معاہدوں کی بات آپ نے اس میں بھی پڑھی تھی، اس میں بھی آپ معاہدوں کی بات پڑھیں گے، اور مال خرچ کرنے کی اللہ کے راستے میں، تو بہت ساری آپ کو سملیرٹیز اس میں ملیں گی. اس سورت کی ایک خاص بات ہے، اور وہ خصوصی بات یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، جبکہ باقی تمام سورتوں میں جتنی بھی آپ قرآن پاک میں نکال لیں ان کے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بہت ساری وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں. ایک وجہ ان میں یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کو کمپائل کیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے यानी सब सूरतों से पहले लिखवाई थी बिस्मिल्लाह, इस सूरत से पहले नहीं लिखवाई थी, तो नहीं लिखवाई तो नहीं लिखी उन्होंने, ठीक है। तो अपनी खिलाफत के अहद में आपको पता है ना, इनको इन्होंने किताबी सूरत में कुरान पाक को तरतीब दिया था। तो उन्होंने फिर ये फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन दोनों सूरतों को यानी अनफाल को और तौबा को इसी तरह मिला के ही पढ़ा जाता था, यानी बीच में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती थी, तो इसलिए लिखने में भी उन्होंने नहीं लिखी। तो एक और वजह बताई जाती है, और वो ये वजह बयान की जाती है कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने बरात का इजहार फरमाया है मुशरिकीन से, और इसमें अल्लाह ताला का गज़ब है, और बिस्मिल्लाह में अल्लाह की रहमत है जो उससे बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है, तो इसलिए ये सूरत के शुरू के अंदर, चूँकि वो नाराज़गी का इजहार है स्टार्ट में ही, तो इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं लाई गई, क्योंकि बिस्मिल्लाह नाराज़गी के ऑपोजिट एक बात है। एक और भी वजह बयान की जाती कि सूरह अनफाल और सूरह तौबा के चूंकि जो मजामीन है वो एक जैसे हैं, और बिस्मिल्लाह जो होती है वो बीच में बैरियर होती है ना, तो दोनों के चूंकि मजामीन सेम है तो इसलिए बीच में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। तो अब हम क्या करें, क्या बिस्मिल्लाह पढ़े ही नहीं इससे पहले? तो देखें, इसमें फुकहा ने ये फरमाया है कि जो बंदा तो पीछे से पढ़ रहा है ना सूरह अनफाल की, आप मसलन तिलावत कर रहे हैं, तो आप तिलावत करते करते अब सूरह तौबा पे पहुंचे, तो अब आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो इंसान, जैसे अभी हम स्टार्ट ही सूरह तौबा से कर रहे हैं, और कोई भी काम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू फरमाते थे तो बिस्मिल्लाह कह के शुरू करते थे, तो तब हमें चाहिए कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ के ही शुरू करें। कोई लोग सोचते हैं कि यहाँ पे भी हमने स्टार्ट में ही नहीं बिस्मिल्लाह पढ़नी, तो इसलिए ये बात फिर सही नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक चीज़ का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करते थे। तो ये समझ आ गई हो आप, होगी आपको जी, दूसरा पॉइंट समझ आ गया, और पहला पॉइंट कि यानी इसके अंदर बिस्मिल्लाह में तो अमान है ना, और इसके अंदर आप देखेंगे कि स्टार्ट से ही आप देखेंगे कि बड़ी शिद्दत है, बहुत सख्ती है, ठीक है। तो ये यानी कुछ वजूहात मैंने आपके सामने रखी हैं, इसकी और भी बहुत सारी वजूहात बयान की गई हैं जिनके अंदर हमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं। बस इतनी बात समझ लीजिए कि जब अल्लाह ताला ने, जिसका ये कलाम है, उसने नहीं नाजिल की यहाँ पे बिस्मिल्लाह, तो नहीं की, उसकी वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं हमें बताई, तो बात ही ख़त्म हो गई। तो इसलिए जब हम कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे तो हम इसी तरह पढ़ते चले जाएंगे, सूरह अनफाल मुकम्मल करेंगे और फिर सूरह तौबा शुरू कर देंगे बगैर बिस्मिल्लाह के, ठीक है। अच्छा जी, तो आज हम इंशाअल्लाह ताला इस सूरत की फर्स्ट 15 आयास पढ़ेंगे और देखते हैं कि ये सूरत हमें क्या पैगाम देती है। आप चूंकि पिछली सूरत आप देख चुके हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या इसके मजामीन भी होंगे और किस तरह से ये सूरत चलेगी। फिर मैं आपको इंशाअल्लाह इसके शाने नज़ूल भी बताऊंगी। जिन लोगों ने सीरत पढ़ी हुई है इंशाअल्लाह उनके लिए तो बेहद आसान होगी समझनी, इसीलिए सीरत पढ़ना बहुत ज़रूरी है कुरान पाक को समझने के लिए, क्योंकि उससे आप फिर रिलेट कर सकते हैं, आपको पता चलता है कि कौन सी बात हो रही है, किस ज़माने की हो रही है, ठीक है। तो आयत नंबर 1 to 15, इससे पहले थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये आयात जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये कब नाजिल हुई थी। ये उस वक्त नाजिल हुई थी जब मक्का फतह हो चुका था, ठीक है। मक्का फतह हो चुका है और अब क्या करना है, आगे क्या स्ट्रेटजी होगी मुसलमानों की, वो इसके बाद बयान हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया एक मुआहिदा हुआ था, एक एग्रीमेंट हो गया था, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया मुसलमानों के और मुशरिकीन के दरमियान, कि 10 साल तक अब हम आपस में जंग नहीं करेंगे, अमनो अमान का ज़माना रहेगा। और ये भी उसके अंदर एक क्लॉज थी कि जो हमारे हलीफ हैं, हलीफ कौन होते थे, एक तो रिश्तेदारी की वजह से आपका किसी के साथ ताल्लुक बनता है, और उस जमाने में चूंकि ट्राइबल सिस्टम था, कबीलों में लोग रहते थे, तो जो कबायली निज़ाम होता है उसके अंदर लोग अकेले अकेले नहीं रह सकते, लोगों को अपने साथ कोई हलीफ चाहिए होता है। देखिए वहाँ पे कोई पुलिस या आर्मीज या ऐसी चीज़ें तो थी नहीं। अब कबायली सिस्टम बहुत डिफरेंट है, आज भी हमारे कबायल इलाके हैं, कबायली इलाके हैं, उनके अपने ही सिस्टम है, वो किसी और को नहीं मानते। तो जमाने पहले लोग इसी तरह कबीलों में रहा करते थे, और उनको हलीफ इसलिए बनाने पड़ते थे। हलीफ क्या होता था, हलफ उठा के किसी के साथ, किसी का पसंद साथी बन जाना, साथ सपोर्टर या भाई बन जाना उनके, तो वो हलफ उठाते थे। अब इसके बाद समझ लें दोनों एक हैं, अब कि कोई एक के ऊपर हमला करेगा दूसरे पे भी हमला समझा जाएगा, कोई एक के साथ कोई ज्यादती करेगा तो उसके साथ समझी जाएगी कि दूसरे के साथ भी इसने की, तो जब लड़ने खड़े होंगे तो दोनों एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से लोग हलीफ बना लिया करते थे, कबाइल अपने साथ किसी को मिला लेते थे ताकि उनकी स्ट्रेंथ हो और दूसरे डरे, और वो फिर इनके साथ कोई सपोर्ट मिल जाए इनको, तो इसलिए वो हलीफ बनाते थे। ठीक है, अब उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज ये थी कि जो हमारे हलीफ हैं, कोई भी आपका हलीफ बनना चाहे आपका बन जाए, जो हमारा बनना चाहे हमारा बन जाए, वो भी इसी कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड हैं, वो भी हमारे साथ ही है ना, हमारे साथ ही हैं वो, तो वो भी इंक्लूडेड है। जो आपके साथ ही हैं वो भी बाउंड हैं कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वो भी इसी तरह अबाइड करें, इसी तरह इसको पूरा करें जैसे कि हम कर रहे हैं। समझ आ रही है बात, इजी बिल्कुल वर्ड्स में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, जो कुरैश थे इनके हलीफ जो कबीला था उसका नाम था बनू बकर, और मुसलमानों का हलीफ कबीला था बनू खुजा। तो अभी 2 साल ही हुए कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए, और हाल ये हुआ कि बनू बकर जो थे इन्होंने बनू खुजा के एक आदमी को कत्ल कर लिया, कर दिया, और उसका माल भी लूट लिया। और ये 8th हिजरी की बात है, 6th में हुआ था उदयबिया का मायदा। और कुरैश ने भी रात को छुप के बनू बकर के साथ मिलके, हालांकि इन्होंने देखे मुआहदा किया हुआ है और इनको पता है कि बनू खुजा मुसलमानों का हलीफ है, तो इन्होंने बनू बकर के साथ मिलके उनके ऊपर चढ़ाई की, हद तक कि बनू खुजा ने हरम में पनाह ले ली, उनको इतना मार कूट की है उनकी कि ये भी हद फलांग के उन्होंने ये तक किया कि हरम का भी एहतराम नहीं किया, और वहां पे भी जाके इनको मारा, कत्ल किया, तो इन पे हमला भी किया, इनके माल भी लूटे, इस मुआहदे को तोड़ दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ किया था, और हत्ता के हरम में भी जाके इनको मारा। तो इनमें से जो लोग बच गए वो लोग दौड़ते भागते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और उन्होंने बताया हमारे साथ तो ये हुआ है, हमारे साथ तो इन्होंने ये किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी इमदाद की जाएगी, विल हेल्प यू, क्योंकि उनके साथ उनके हलीफ थे ना। अब कुरैश को समझ आ गई कि देखें ये तो मुआहदे की हमने खिलाफ वर्जी कर दी है, ब्रेक किया इसको, तो उन्होंने जल्दी से फिर क्या किया, अबू सुफियान को मदीना भेजा, उन्होंने कहा ये ना मुसलमान हमारे पर हमला कर दे, तो अबू सुफियान को मदीना भेजा कि जाओ जाके तुम मुआहदे को रिन्यू करके आओ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से बात करने से इनकार कर दिया, वो बाकी सहाबा के पास भी गया, उन्होंने भी नहीं बात मानी। अब उसके बाद फिर आगे भी मैं आपको बात बताऊंगी, फिर उसके बाद वो वापस आ गया मायूस होके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से तैयारी की और मक्का पे चढ़ाई कर दी। खामोशी से क्यों, बहुत राजदारी के साथ, ऐसा क्यों किया, इसलिए ताकि कोई खून खराबा ना हो, और जस्ट वो कॉट विद सरप्राइज हो, उनको पता ही नहीं होगा कि कोई आ रहा है, तो फिर मुकाबले के लिए भी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि हरम में कोई ऐसे काम हो, कोई ब्लड शेड हो। तो अब मक्का अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरसकून तरीके के साथ, बगैर किसी खून खराबे के, बगैर किसी जंग के, वो मुसलमानों को हासिल हो गया। इसके बाद अब मुसलमानों की वहां पे हकूमत है। अब क्या होगा, अब तो जाहिर है कोई ना कोई चीजें मुसलमान अपनी इंप्लीमेंट करेंगे। फिलहाल तो काबा में बुत भी रखे हुए थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा, लेकिन उसके बाद हज भी आना था। ये रमजान का वाक्य है, उस साल का हज तो खैर गुजर गया क्योंकि मुसलमान जो थे वो एक और जंग के लिए निकले हुए थे, उसकी भी बात होगी इंशाल्लाह इस सूरह में। तो जब नेक्स्ट ईयर आया, 8th का तो हज ऐसे ही गुजर गया, नेक्स्ट 9th ईयर, 9th हिजरी में अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए जा सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं पसंद फरमाया कि आप हज पे जाएं, क्योंकि वहां पे मुशरिक अपने मुशरिकाना तरीके अपनाए हुए थे, जो उनका तलबिया भी था उसमें भी अल्लाह के शरीक ठहराते थे। इसी तरह जो हज करते थे वो भी नंगे होके तवाफ किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लीडरशिप में एक ग्रुप हज के लिए रवाना किया आपने। तो जब वो चला गया ग्रुप, तो इसके बाद ये कुछ आयात नाजिल हुई, जिन आयात के अंदर इंस्ट्रक्शंस दे दी गई कि ये इंस्ट्रक्शन सबको सुना दी जाए। ठीक है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो नहीं गए, अब बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा है। अब वहां पर ये ऐलान किया जाना था कि जो भी न्यू क्लॉज आ रहे हैं उनका ऐलान किया जाना था, जिसके लिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा, उनको रवाना किया पीछे ताकि वो जाके ये ऐलान कर दे। तो हजरत अली को क्यों भेजा, इसलिए क्योंकि उस जमाने में किसी की तरफ से कोई खास कोई बात की जानी होती थी तो उसका कोई करीबी रिश्तेदार आके कहता था तो उसकी तरफ से बात समझी जाती थी। नबी अलैहिस्सलाम तो नहीं है ना वहां पे, तो आपने फिर अपने दामाद को भेजा, अपने चचा जात को भेजा कि वो जाके मेरी तरफ से ये ऐलान कर दें। ठीक है, अब वो ऐलान किया था, ये ऐलान याद रखिएगा कि हजरत अली ने 10 जिलहज को, जो योम नहर है, जिस दिन के मतलब आप जाके कुर्बानी भी करते हैं और कंकर भी मारते हैं और सर मुंडवाते हैं मतलब, उस दिन मीना में हजरत अली ने ये आयात पढ़ के सुनाई, और इन आयात में वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो अब नई इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं हज के हवाले से भी और वैसे भी कि क्या अब आगे स्ट्रेटजी होगी। एक बात याद रखिएगा, ये वो सूरा है जिस सूरत के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, और आपने अक्सर सुना भी होगा जी सिलेबस से सूरत तौबा निकाल दी और ये निकाल दी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कुफार में से हैं, जो मुखालिफ हैं इस्लाम के, वो इस सूरत में से आयतें लेके मिसकोट करते हैं। और मैं आपको बताऊंगी भी कि कहाँ पे इन आयात को मिसकोट किया जाता है और फिर इतनी इसकी तशहीर करके इस्लाम को बदनाम किया जाता है और फिर कहा जाता है देखो इनकी इस सूरत के अंदर ये है। अब उसके बाद फिर वो डिमांड करते हैं कि देखें ये सूरत आप निकाल दें अपने सिलेबस से, क्योंकि ये सूरत सही नहीं है, ये तो पता नहीं लड़ने मरने का ही कहती है या क्या कहती है। मगर हमें एक बात को समझना चाहिए कि जब भी सूरतों को पढ़ें, इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जब भी आपको कहा जाता है ना कि भाई आप खुद नहीं, आप किसी टीचर से पढ़ें, कि जब सूरत आप पढ़ रहे हैं आपको उसका पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, किन हालात में वो सूरत उतरी है, कब उतरी है, क्या था उस वक़्त वहाँ की, क्या चल रहा था उस वक़्त, उस सिचुएशन क्या थी, तो तब आपको वो आयतें समझ आ सकती हैं। ऐसे नहीं है कि उठा के कोई भी आयत एक उसका पीस उठा के और उसके बाद जाके कोई बात कह दी जाए, ये बिल्कुल गलत है, और इसी तरह फिर बदनाम किया जाता है इस्लाम को और इन इन इस सूरत को बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि ये बहुत काफरों के खिलाफ है और ऐसे और ये है। मगर अब आपको समझ आ गई कि क्या कॉन्टेक्स्ट है बात का, किस हवाले से बात चल रही है, कौन सा जमाना चल रहा है, खास तौर पे जो सीरत पढ़े में उनको अच्छी तरह पता होगा कि क्या जमाना चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी आयात को। बराअतु मिनल्लाह, बरियु जिम्मा, बरात है, बरियु जिम्मा है, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से बरात है, और रसूली और उसके रसूल की तरफ से बरात है। किन के साथ? इल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, वो लोग जिन्होंने अहद किया किए, जिनके साथ अहद किए तुमने मुशरिकों में से, जिन मुशरिकों के साथ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट थे, तुम करते रहे हो, अल्लाह और रसूल बरी हैं उनसे, बेजारी का ऐलान करते हैं उन लोगों से जिनसे तुमने मुआहदे किए हैं मुशरिकीन में से। और आप देख चुके हैं कि मुआहदा उन्होंने कैसे तोड़ा और कैसे इस मुआहदों को का बिल्कुल पास नहीं रखा, तो उसके बाद ये बात कह दी गई कि अब इनके लिए बरात का ऐलान है, ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग मुशरिकों में से जिनसे आपने अहद किए हैं, क्योंकि उन्होंने अहद तोड़ा था ना, इसलिए। और आगे आएगा भी कि जो किन लोगों ने क्या क्या किया था और किन लोगों के साथ फिर भी मुआहदा रखा जाएगा और किन के साथ नहीं रखा जाएगा। जो मैंने आपको बात बताई कि हज़रत अली ने जाके जो ऐलान किया था, उसके अंदर कुछ और बातें भी शामिल थीं, जिनमें से एक ये भी थी कि आज के बाद कोई मुशरिक हज के लिए नहीं आएगा। यानी आप तो जो आ गए हो सो आ गए हो। इस दिन का इंतखाब क्यों किया गया? क्यों उस वक्त कोई टीवी चैनल्स तो थे नहीं, या कोई ऐसे ऐलान की कोई इंटरनेट तो था नहीं कि कोई बात बता दी जाए तो सबको, दुनिया को पता चल जाए। हज के मौके पे लोग दूर दूर से आते थे और ये बेस्ट टाइम होता था कोई बात पहुंचाने का, लोगों को बताने का। तो उस वक्त को चूज किया गया ये ऐलान करने के लिए कि बस इस साल आ गए हो ना, अब आइंदा नहीं। और दूसरी बात ये भी उनको बता दी गई कि इस साल के बाद अब कोई भी बैतुल्लाह के गिर्द नंगा तवाफ नहीं करेगा। और इसके बाद कोई ऐसा शख्स दाखिल नहीं होगा हरम में जो दीन इस्लाम को कबूल करने से इनकार करता हो। ठीक है, तो कुछ चीजें यानी उनको साफ साफ बता दी गई और यहाँ पे ऐलान कर दिया गया ताकि दूर दराज के इलाकों तक भी ये बात पहुंच जाए। फसीहू फिल अर्दी अरबाता अशुर, बस चल फिर लो जमीन में 4 महीने। 4 महीने की तुम्हें मोहलत दी जाती है, इन 4 महीनों में तुम जमीन पे चल फिर लो, मतलब है कि तुम सोच समझ लो अच्छी तरह, तुम देखभाल लो, तुम लोगों से मिलजुल लो, पता कर लो क्या बातें हैं, वो सारी तुम देख लो। यानी 4 मंथ्स की, जिनके साथ मुआहिदा था उनको 4 मंथ्स की मोहलत दे दी गई। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा मैं एक बात बता दूंगा, आप इसको लिख भी लें, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएंगी सारी बातें। 4 किस्म के मुआहदे थे जो जिनमें मुसलमान उस वक्त बाउंड थे या जो उन्होंने किए हुए थे। अब देखिए ना, ये मक्का जब फतह हुआ है तो ऐसे थोड़ी जाते कि सारे मुआहदे एकदम तोड़ के और ख़त्म कर दिए जाएं, और ऐसे ऐसे नहीं है। मुसलमान ने कई जगह पे मुआहदे किए हुए थे, मुशरिक कबाइल के साथ भी थे, अभी मुशरिकी ने मक्का के साथ भी जैसे था, और भी मुआहदात थे। तो 4 किस्म के मुआहदे थे। नंबर 1, उन लोगों के साथ मुआहदा था जिसमें कोई टाइम बाउंड नहीं था, कोई टाइम का तायुन नहीं था, कोई टाइम फिक्स नहीं था, बस एक ओपन एंडेड जिसको कहेंगे मुआहदा था। अब उनको 4 मंथ्स की डेडलाइन दे दी गई। 4 मंथ्स की डेडलाइन दे के उनको ये कहा गया कि अब आपके पास ये 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में आप आपको आपके साथ हमारा मुआहिदा, इसके बाद हम मुआहिदा नहीं कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ओपन एंडेड था ना, कोई टाइम तो था नहीं उसमें फिक्स। नंबर टू, जिनके साथ 4 महीने से कम की मुद्दत रह गई थी, 2 महीने बाद मसलन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, उनको भी 4 महीने की मोहलत दे दी गई कि अब आपके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट को 4 मंथ्स तक एक्सटेंड कर लेते हैं। नंबर थ्री, जिनके साथ 4 महीने से ज्यादा की मोहलत थी अभी रहती, ज्यादा मसलन साल का कोई मुआहदा है, 6 महीने का आगे 6 महीने बाद एक्सपायर होना है, और मुआहदा खत्म होने में यानी अभी 4 से ज्यादा टाइम है, और वो मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहे थे, मुआहदे में बददियानती करते थे, उनको 4 महीने की मोहलत दे दी गई कि 4 मंथ्स की तुम्हारे पास मोहलत है। अब ये चारों वो लोग हैं जिनकी 4 मंथ्स की मोहलत है, ठीक है। एक आखिरी फोर्थ वन रह गया, जिनके पास कंप्लीट जितनी उनकी मोहलत है उसको कंप्लीट करने के लिए उनके साथ मुसलमान तैयार हैं, वो कौन लोग हैं? जिनकी वायदे की मुद्दत 4 मंथ से ज्यादा है, और वो मुआहदे की पाबंदी भी करते हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है जो कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी की हो उन्होंने कोई, ये सारी बातें आगे आनी है, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफली बता रहा हूँ। तो उनकी 7 मुद्दत पूरी की जाए, मसलन किसी के साथ 8 महीने का बाद मुआहदा खत्म होना है, तो वो भले लोग हैं, भले मुशरिकीन भी हैं, लेकिन वादों को निभाने वाले हैं, तो इसलिए उनके साथ मुआहदे की मुद्दत को पूरा किया जाएगा। समझ आ गई ये बात? अब ये बात समझ के अब आप देख लें, यहां पे आपको बताया जा रहा है कि आप तुम लोग जिन्होंने जिनके साथ मुआहदे किए हुए थे, अब आगे एक्सेप्शनल केस आ जाएंगे, तुम लोग 4 महीने तुम्हारे पास टाइम है, अभी ऐलान आम किया जा रहा है, 4 मंथ्स का टाइम तुम्हारे पास है। अभी क्या है, कौन सा दिन है? 10 जिलहज का, तो यानी 10 रबीउस्सानी तक आपके पास टाइम है, आप घूमो फिरो रहो यहाँ पे, आप आजाद हो। वालमू, और जान लो, अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह, कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं। ये नहीं समझना कि अल्लाह ताला ने 4 मंथ्स का इसलिए टाइम दिया है कि पता नहीं अभी तुम्हें पकड़ नहीं सकता, नाउज़ु बिल्ला, या ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला को तुम आजिज नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे साथ एक मोहलत देने का मामला है, एक शफकत का मामला है, कि जो वो 4 महीने की मोहलत दे रहा है, कि सोच समझ लो तुम, 4 महीने के बाद क्या होगा, अगर 4 मंथ्स दे दिए हैं तो 4 मंथ के बाद क्या होना है वो अभी हम देखेंगे। अन्न अल्लाह मुखजिल काफिरीन, और अल्लाह ताला बेशक काफरों को रुसवा करने वाला है, अगर तुमने हक को जान के भी और फिर भी कबूल नहीं किया, अल्लाह से भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते, फिर तो काफरों की रुसवाई लिखी हुई है बस। अब देखिए ना, इस्लाम तो गालिब हो गया, बहुत अरसे से पूरा अरब देख रहा था कि देखते हैं मक्का का क्या बनता है, देखते हैं मक्का के किसके हाथ में जाता है, देखते हैं जो भी जाहिर हक पे होगा मक्का उसी के पास जरूर आएगा, तो क्या क्या होता क्या है, इंतजार में थे, ढूंढ किस करवट बैठता है। तो उसके बाद हालात ऐसे हुए कि मुसलमान मक्का को फतह करने में कामयाब हो गए। अब सबके सामने ये आ गया, इससे पहले भी यौमे फुरकान पे भी सबको पता चल गया था कि फर्क करने वाला दिन था ना, कि हक क्या है और बातिल क्या है। अब सबके सामने आ गया जब मक्का फतह हो गया, हक क्या है? इस्लामी हक है। और अब किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाता, जिनको देखें पहले कोई डर होगा कि हाय हमारी कबीला हमें निकाल ना दे, या पता नहीं हमें टॉर्चर होगा या क्या होगा, अब उनके पास भी टाइम था, अब उन मक्का फतह हो चुका, जो हक जान चुके थे, और जिनको अभी हक का नहीं पता था उनके पास टाइम है। तो अब कहा गया कि अब आपकी अमान यहां पे सिर्फ 4 महीने के लिए है, 4 महीने में आप अपने फैसले कर लो। वादान मिन अल्लाह, ऐलान है अल्लाह की तरफ से व रसूल ही और उसके रसूल की तरफ से, इलन नास लोगों के लिए, सब लोगों को ऐलान किया जाता है। क्या कब किया गया? यौमल हज्जिल अकबरी, हज्जे अकबर के दिन सबको ये ऐलान किया जाता है। और वो ऐलान क्या है? अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह ताला बरी उम्मिनल मुशरिकीन व रसूलु, अल्लाह बरी है मुशरिकों से और उसका रसूल भी बरी है मुशरिकों से। अब अल्लाह और उसके रसूल का कोई माहदा मुशरिकों के साथ नहीं है। अब इनको मजीद मनमानियां करने का कि वो इजाजत नहीं दी जाती। अब अगर तुम फिर भी अपनी उसी के ऊपर गुमराही पे कायम रहते हो तो अब कोई जिम्मा नहीं। तो देखिए, पहले बता दिया गया ना, अगर तुमने नहीं माना तो फिर देख लो, फिर रुसवाई है। तुम अल्लाह के कब्जे से बाहर नहीं, कहाँ भाग के जाओगे? तुम अल्लाह की कब्जा है, कुदरत में, वो दुनिया में भी सजा दे सकता है और आखरत में भी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कुर्बानी वाले दिन इन लोगों में जो ऐलान के लिए भेजे गए थे भेजा, हमने मुनादी कर दी कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज को ना आएगा और बैतुल्लाह का तवाफ कोई शख्स नंगा होके नहीं करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा, सूरह बरात का ऐलान कर दे, बस आपने भी मीना में हमारे साथ ईद के दिन इन्हीं अहकाम की मुनादी कर दी। और इसके बाद कभी भी कोई मुशरिक हज को नहीं आया। और मुसनद की रिवायत में है कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इस साल हजरत अली के साथ मैं था और हमने पुकार पुकार के मुनादी कर दी कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही जाएंगे, बैतुल्लाह का तवाफ आइंदा से कोई शख्स नंगे हालत में नहीं करेगा। जिनके साथ हमारे मुआहदे हैं इनकी मुद्दत आज से 4 महीने, इस मुद्दत के गुजर जाने के बाद अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बरी जिम्मा है। इस साल के बाद किसी काफिर को बैतुल्लाह के हज की इजाजत नहीं है। तो ये वो अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं। अब देखिए कि उनको भेजा हुआ तो वो इसको अनाउंस कर रहे हैं। फइन तुबतुम, फिर अगर तुम तौबा कर लो, यानी अगर तौबा का फिर भी तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है, आ जाओ। तौबा का मतलब क्या है? इस्लाम ले आओ। फहुवा खैरुल लकुम, तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए। वह इन तवल्लई तुम, और अगर मुंह फेरा तुमने, फालम मुंह, तो जान लो, अन्नकुम गैरु मुआजिज़ अल्लाह, तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। यानी इन 4 महीने हैं तुम्हारे पास, अगर तो तुम तौबा कर लेते हो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। अगर तुम मुंह फेरते हो तो फिर तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते, उसके काबू से बाहर तो नहीं हो तुम। और फिर ये बता दिया गया कि जो मुशरिक हैं फिर वो इस साल इस 4 महीनों के बाद फिर यहाँ नहीं रह सकते, मक्का में नहीं रह सकते, बाकी जहाँ पे भी कहीं रहे, लेकिन ये इस जगह पे ये वो नहीं रहेंगे। और बशीर लदीन कफरू भी आदा बिन अलीम, और बशारत दे दें। बशारत तो खुशी की होती है, खुशखबरी होती है, यहाँ पे अजाब अलीम की बशारत क्यों कहा गया? ये एक तंज है उनके लिए, ये दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुन लो। दुनिया में वो अजाब अल्लाह ताला भेज सकते हैं और आखरत का तो अजाब है ही दर्दनाक। जहां पे जो जहन्नुम की आग है वो इस दुनिया की आग का 70th हिस्सा है, 70वां, 70, 70। यानी 70 times मोर इस आग को कर दें जो दुनिया में है तो वो जहन्नुम की आग बनती है। दर्द देने वाला अजाब ऐसे ही नहीं है, दुनिया की आग में ही कोई जल जाए तो उसका क्या हाल है? दुनिया की आग ही जलाने के लिए काफी है, तो उस आग के क्या कहने कि जो इसे 70 गुना ज्यादा हो। और दुनिया की आग कोई अगर डबल कर दिया जाए, ट्वाइस कर दिया, 70 को तो छोड़ें, ट्वाइस कर दिया जाए ना, तो आप इसके ऊपर हंडिया नहीं रख सकेंगे, हंडिया भी पिघल जाएगी, कोई बर्तन रखेंगे पिघल जाएगा। मैं उस पे सस्टेन नहीं कर सकता। तो कहाँ 70 गुना? अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसीलिए फरमाया जान लो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ईमान लाना तुम्हारे लिए बेहतर है, तौबा करना बेहतर है। अल्लाह हू अकबर। ये देखें ये जमीन अल्लाह की है ना, इसके ऊपर इबादत भी अल्लाह ही की होगी, इस पे कानून भी अल्लाह ही का चलेगा, इस पे लोग अल्लाह ही की फरमाबरदारी करेंगे, उसका ही हुक्म चलना चाहिए। और बहुत अंडरस्टैंडेबल बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं जो किसी को समझ नहीं आती। आप किसी के घर में जाते हैं, वहां पे वो घर उसका है, तो वो कहेगा कि जैसे जिधर मैं बिठाऊं उधर आप बैठेंगे, क्योंकि दूर पूरे घर में घूमते रहें। आप पकड़ के चीजें उसके घर की तोड़ना शुरू कर दें, कहेगा मेरा घर है, आपका क्या काम है? आप उसके घर में कुछ और ही अपनी मर्जी का कुछ काम शुरू करा दें, वो आपको इजाजत नहीं देगा। और आपको भी समझ है इतनी कि नहीं भाई ये इसका घर है, मैं तो नहीं इसमें ऐसे कर सकती। अपने घर में आप जो मर्जी करें। आप मुझे बताएं ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है? ये भी एक बड़ा घर है ना जिसमें हम सब रह रहे हैं। इसमें बात समझ नहीं आती कि यहाँ किसका हुक्म चलना चाहिए, ये किसका है? हम अपनी मर्जी से यहाँ कुछ कर सकते हैं? नहीं, मर्जी चलेगी तो उसकी चलेगी जिसका ये बड़ा घर है, उसको बड़ा घर ही समझने ना। लेकिन हम कहते हैं हम रहेंगे भी उसकी जमीन पे, लेकिन करेंगे भी अपनी मर्जी, हम बदन भी उसी का दिया हुआ इस्तेमाल करेंगे। बदन दिया हुआ, ये जिस्म दिया हुआ किसका है? उसी का। लेकिन मर्जी हम करेंगे अपनी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म कब? पहले बात ही गलत है, मेरा जिस्म है ही नहीं, ये तो अल्लाह की अमानत है मेरे पास, थोड़ी देर के लिए उसने मुझे दिया, मेरा नहीं है। अगर मेरा है ना, वाकई मेरा है, तो दिल को धड़का के बताएं, ये दिल बंद होने लगे ना, इसको बंद होने दे, कोई बीमारी हमें ना लगे, हमारे बाल ही ना बढ़े, क्योंकि बाल बढ़ते हैं फिर उतारने पड़ते हैं, तो बाल ही ना बढ़े, नाखून ही ना बढ़े, काटने पड़ते हैं। तो हम, मैं कह दूं अपने जिस्म को मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कहें अपने नाखूनों को नहीं बढ़े, कहें अपने बालों को नहीं बढ़े, कहें अपनी आंखों को कहें कि कमजोर क्यों हुई हो, सही देखो, ये जिस्म हमारा जिस्म नहीं। और रोजाना हमें पता चलता है हमारा नहीं, हमारे काबू में ही नहीं, इसके ऊपर बुढ़ापा आ रहा है, ये कमजोर हो रहा है, ये बीमारियों में और कई कमियां इसके अंदर आ रही हैं। आप जाके टेस्ट कराते हैं, पता चलता है ये कमी है, ये कमी है आपके अंदर, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये मेरी नहीं सुनता। हाँ, लिमिटेड सा इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया हुआ, लिमिटेड का, वो भी लिम्स का, कि भाई जुबान है, हाथ है, पैर है, ये है, दिमाग है, इनका इनका इख्तियार हमारे हाथ में दिया है कि अच्छा भाई इनसे तुमने जो अमल करना है कर सकते हो। इस इख्तियार को हम कुल्ली इख्तियार समझ के बैठ गए, और वो भी टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है। फिर इंसान कहता है कि नहीं, जो मैं चाहता हूं जैसे मेरी मर्जी है वैसे होना चाहिए, कानून भी मैं अपना लगाऊंगा यहाँ पे इस दुनिया में। कैसे? तुम रहते किसी और के घर में हो, कानून अपना लगाना चाहते? तो जिसके घर हैं उसी की बात मानी जाएगी, वो ही जैसे चाहेगा, वो आपको अपने ड्राइंग रूम में बिठाए वहां बैठेंगे, वो आपको कुर्सी पे बिठाए कुर्सी पे बैठेंगे, बिस्तर पे बिठाए बिस्तर बैठेंगे, बैठते हैं कि नहीं बैठते? कितने सियाने हैं ना वहां पे। लेकिन ये बात ना समझ आई कि अल्लाह ताला कहता है हलाल का, तो नहीं हमने हराम खाना, उसमें जाके पढ़ना, जबकि वो जिसके मुल्क है वो बता रहा है कि क्या होना चाहिए। आप मुल्कों का भी देख लें, यहाँ पे आप किसी मुल्क में कर सकते हैं कि आप उसकी खिलाफ वर्जी करें कानून की? कहते हैं हमारा मुल्क है, हम जो मे भी दूसरे मुल्क में वो चीज जायज हो, उस मुल्क में आके कहते हैं नहीं आप कर सकते। अब क्या आपको उस मुल्क का कानून मानना पड़ता है? तो ये तो पूरी दुनिया ही अल्लाह ही की है, उसी का कानून चलना चाहिए। और ये बहुत अंडरस्टैंडेबल बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ आने से कासिर हो, जो हमें पता ही नहीं चलती कि भाई क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। नहीं, हमारी तो अपनी मर्जी होनी चाहिए। कैसे आपकी? आप जाएं अपना फिर कोई जमीन अपनी ढूंढ लें, जाओ इस दुनिया, अख्तारो समावाती बलार्द, दुनिया आसमानों जमीन के कितारों से निकल जाओ, निकल सकते हो तो निकल जाओ, अल्लाह तआला ने कहा जाओ। जाओ जिधर अल्लाह का मुल्क नहीं है वहां जाके अपने बस्ती बसाओ, वहां जाके अपना घर बनाओ, फिर करना जो मर्जी। ये निकल ही नहीं सकते तुम। ये बात बहुत सिंपल है, लेकिन उतनी ज्यादा लोग इससे नासमझी का मामला करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जब बरी उजिम्मा होना कह दिया ना और मुआहदे खत्म होना कह दिया, तो अब यानी हमारी दोस्ती खत्म, अब मुआहदे खत्म, अब एक तरह से ऐलान जंग है जो 4 मंथ्स तक के लिए सिर्फ अब आपको मौका दिया जाता है, इसके बाद अब अपना रास्ता लें। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं रह सकता जो कि अल्लाह ताला का कलमा ना पढ़े। अल्लाह देखे इस जगह को आबाद किसने किया था, हाँ मक्का को आबाद करने वाले कौन थे, बीबी हाजरा जिनको लाके किसने बसाया था, उनके शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। क्यों उनको ये डर था कि वो दुआएं भी तो उनकी यही हैं, हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं। उनको शिर्क से बेजारी थी इतनी, वो चाहते थे एक तौहीद का मरकज हो, यहाँ पे लाके उन्होंने अपने बीवी बच्चे को बसाया। ये तो था ही तौहीद की जगह, इसी के लिए काबा बनाया गया था, और इन्होंने क्या बना के रख दिया, इसी को शिर्क का अड्डा। तो यहाँ पे मुशरिक नहीं रह सकते। इस घर की या इस जगह की जो बुनियाद है ना, वो ही तौहीद है, और सबसे बड़े तौहीद के अलमबरदार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सब जगह उनकी तौहीद की बात की गई है कुरान में, और यही कहा गया है कि वो शिर्क से बेजार थे। इल्लल्लदीन आहदतुम मिनल मुशरिकीन। अच्छा, अब मैंने आपको एक फोर्थ वाला बताया था ना पॉइंट, सबके साथ 4 महीने का है मुआहिदा, लेकिन फोर्थ वाला मुआहिदा किसके साथ था, अगर आपने लिखा है तो मैंने आपको बताया कि वो लोग जिनसे 4 मंथ से ज्यादा का मुआहिदा था, और वो बड़े अच्छे नाइस लोग हैं, वो अपने मुआहदे पूरे करते हैं, उन्होंने कोई ऐसी गड़बड़े नहीं की, इनकी तरह नहीं किया कुरैश की तरह के जाके वो उनके साथ ही मिलके बनू बकर के साथ ही मिलके और फिर जाके बनू खुजा पे हमला कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्शनल वाला जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो यहाँ है। इल्लल्लदीन आहदतुम, वो लोगों के लिए 4 मंथ्स की मोहलत नहीं है जिनके साथ, जिनसे तुम अहद किया तुमने, मुशरिकों में से ही है वो। सुम्मा फिर लम यम कुसू कुम शैअन, फिर उन्होंने कमी नहीं की तुमसे कुछ भी, ऑनेस्टली वो अपना वायदा निभा रहे हैं, खयानत नहीं की उन्होंने। वलम युदाहिरु अलैकुम, और ना ही उन्होंने किसी को सपोर्ट किया तुम्हारे खिलाफ, अहदन किसी एक को भी। जैसे आप देख रहे हैं यहूदी क्या करते थे, उनके साथ भी मुआहिदा था मीसाक मदीना, लेकिन पीछे पीछे से जाके और वो कुरैश के साथ मिलके और उनको उकसाते थे कि तुम हमला करो ना, तुम क्यों आराम से बैठे हो। तो लेकिन कुछ थे वो अमन वाले लोग थे। देखिए मुशरिकों में से भी ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने वादे का पास रखने वाले होते हैं, जो कि ऑनेस्ट होते हैं, जो कि सच्ची सच बोलने वाले होते हैं, होते वो मुशरिक हैं। तो जो ऐसे लोग हैं उनके साथ तुम भी अपना एग्रीमेंट पूरा करो। इससे हमें ये पता चलता है कि देखिए मुसलमानों के कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स मुशरिकीन के साथ भी हो सकते हैं, इसमें कोई नहीं हरज है कि उनके साथ हमारे कोई मुआहदा कभी करना ही नहीं है, उनके साथ सुलह के मुआहदे भी हो सकते हैं। इसी तरह मुशरिकों में भी डिफरेंट तरह के लोग हैं, उनमें भी ऐसे लोग हैं जो अपने मुआहदे पूरे करने वाले हैं और ऐसे भी हैं जो नहीं करने वाले। फअतिम्मु, तो पूरा करो इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, तो आप भी उनके साथ जो मुआहिदा है ना उसको उसकी मुद्दत तक पूरा करें, यानी आप उनकी अगर मुद्दत 4 मंथ से ज्यादा है तो आप भी 4 मंथ से ज्यादा उनके साथ वो करें मुद्दत पूरी। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है तकवा वालों से। तकवा वाले कौन है, यानी वो लोग जो ये नहीं देख रहे हाँ मुशरिक हैं तो हमने इनको मारना है और हमने तो अब अपने पुराने बदले ही लेने हैं, या हमने तो ये कर, वो हैं जो अल्लाह का डर रखने वाले, जो अल्लाह का डर रख के चलते हैं। समझ आ रही है ये आयतें, क्योंकि आयतें ऐसी हैं जो कि अगर आप खुद पढ़ेंगे ना शायद आपको समझ नहीं आएंगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको तवज्जो से समझा जाए। इनमें बहुत ज़्यादा तफसीर नहीं है, लेकिन इनके अंदर समझने की बहुत चीज़ है कि आपको समझ आ जाए कौन सी आयत क्या बता रही है। अच्छा, एक बात रह गई जो आयत नंबर 3 में थी, ये यौमुल हज अकबर। यौमुल हज तो समझ आती है आपको, हज का दिन, अकबर हज अकबर क्या है, हाँ जी, अखबार हमारे यहाँ जो बहुत मशहूर है वो ये है कि जो हज जुमे के दिन होता है वो हज अकबर है। हालांकि हज को हज अकबर ही कहा जाता था और उम्रे को हज असगर कहा जाता था। उसमें जुमे के दिन के हज की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ ये ऐसे ही बना ली गई है, हज अकबर किया, फिर उसके ऊपर इतना फखर होता है कि जी इसने हज अकबर किया हुआ। अब उसके बाद अपने नाम के साथ हाजी साहब भी लगा लेते हैं, और फिर जो दो तो चार हज कर ले वो फिर अलहाज कहलाना शुरू कर देते हैं। हालांकि देखें, इसमें अपने नाम के साथ हाजी साहब रखने का क्या टाइटल, ये कौन सा टाइटल है, जबकि ये तो फर्ज है, एक फरीजा उसने अदा किया। कौन सा है, उसने कोई ऐसी एक्स्ट्रा बात कर दी है? तो अगर ऐसी बात ही है तो जो नमाज पढ़ने वाला उसको नाम नमाजी रखा करें, उसके नाम के साथ लिखा करें नमाजी, जो जकात देने वाला है जकाती लिखें उसके साथ। तो उमरा करने वाला भी हाजी है, लेकिन वो हाजी असगर करने वाला छोटा हज है और ये बड़ा हज है, बस ये है फर्क। अब इसके ऊपर नाम रख लेने और फिर उसके बाद टाइटल दे के या फखर करना, मैंने जी हाजी अकबर मुझे मिला, ये कोई हाजी अकबर कोई चीज ही नहीं है। हाजी अकबर वो है जो हज है, बस जुमे वाले दिन को हाजी अकबर कहना कोई चीज नहीं है, ठीक है। फइदन सलखल अशहुरुल हुरुम, फिर जब इन सलखा गुजर जाए, क्या गुजर जाए, अल अशहुरुल हुरुम, हुरमत वाले महीने। आम जो हुरमत वाले महीने वो कौन से हैं, जो आम वैसे, अब देखिए ये जो वैसे ना अल्लाह ताला के हाँ, जब से हदीस में आता है, जब से अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को तखलीक दिया ना, तो अल्लाह के यहाँ साल की मुद्दत 12 महीने ही थी। यानी ये 12 मंथ्स इंसानों ने नहीं कोई रखे कि हम सोचे कि ये 12 महीने का पता नहीं इंसानों ने कोई बना के रख लिया सिस्टम, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से 12 महीने का साल था जब से अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया। अब इन 12 में से 4 हुरमत वाले करार दिए गए, जो जमाना है जाहिलियत से ये हुरमत वाले महीने बड़े इज्जत वाले महीने समझे जाते थे। इनके अंदर कोई जंगो जदल नहीं होता था, कोई लड़ाई वगैरह नहीं होती थी। तो ये वैसे कौन से हैं, इकट्ठे 3 आते हैं और एक अलग है, ज़ीकादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, ये इकट्ठे हैं, और एक अलग से है रजब। ये 4 महीने जिनको हुरमत वाले महीने कहा जाता है। अब यहां पर क्या वो हुरमत वाले महीने मुराद है? नहीं, यहां पे वो हुरमत वाले महीने नहीं मुराद, इसलिए कि आगे आप देखें, ये हमें जब बताया गया है कि 4 महीने की उनको मुद्दत दी गई, तो यहां पे कहा गया जब हुरमत वाले महीने गुजर जाएं, तो हुरमत वाले ने यानी 10 ज़िलहज को ये ऐलान हो रहा है, तो 10 ज़िलहज के बाद हुरमत वाला महीना कौन सा है, मुहर्रम है। तो मुहर्रम के साथ अब आप इन मुहर्रम का महीना गुजर जाएगा तो फिर तो दूसरे महीने शुरू हो जाएंगे, हुरमत वाले महीने तो खत्म। तो ये 4 महीने तो नहीं बनते, ये तो 50 डेज बनते हैं सिर्फ, तो 50 डेज की तो नहीं उनको मोहलत दी गई। तो यहां पे कहा गया जब 4 महीने हुरमत वाले महीने गुजर जाए, तो ये वो हुरमत वाले नहीं, ये हुरमत वाले जो इस सूरत में आए हैं कि ये 4 मंथ्स यानी 10 ज़िलहज से लेके 10 रबीउस्सानी तक, ये हुरमत वाले महीने, ये 4 महीने बनते हैं। इस तक अपनी जो भी अब आगे बात आ रही है कि जब ये गुजर जाएं तो फिर क्या इनका, इनको तो ऑप्शन दिया गया, अगर फिर भी ढीठ हैं ना, इस्लाम लाते हैं और कहते हैं हम यहीं रहेंगे, हमने यहाँ से जाना भी नहीं है, फ़क्तुल मुशरिकीन हाइसु वजदतुमुहुम, तो कत्ल करो इन मुशरिकों को जहां कहीं पाओ तुम इनको, फिर आपके लिए गुंजाइश नहीं है, यू कैन नॉट लिव इन दिस एरिया, अब आप इस कंट्री या इस जगह पे नहीं रह सकते। देखिए, हर मुल्क का एक वीजा होता है, हर मुल्क में लोगों को एक वो होती है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं या नहीं रह सकते, उनकी हुकूमत बताती है। इनको कहा गया आप नहीं रह सकते, फिर भी वो वहीं पे रह रहे हैं, तो अगर वो फिर तुम उनको पाते हो यहाँ पे, तुम वो मुसलमान भी नहीं हुए, वो यहाँ से गए भी नहीं, जबकि इनको ऑप्शन दिया गया। आपको पता है सिर्फ इस्लाम ऐसा मजहब है कि जिसमें जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं किया जाता। ये जो कहते हैं ना तलवार के जोर पे इस्लाम फैला, तलवार के जोर पे कैसे फैल सकता है? जो कोई ऐसा कहे उसको बताएं कि हम तो किसी को कह ही नहीं सकते तलवार की नोक रख के चल तू कलमा पढ़ ले, इसलिए कि वो मुसलमान थोड़ी होता है। जब तक कोई दिल से ईमान किया है, दिल की तस्दीक पहले, तो हम तो ऐसे कर ही नहीं सकते। उसके बाद जुबान का बोल है, पहले दिल गवाही दे के अल्लाह एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के अल्लाह के आखिरी रसूल है। तो अगर दिल ही नहीं गवाही दे रहा तो जुबान से करने की क्या बात रह जाती है। लिहाजा हमारे यहाँ तो ये चीज है ही नहीं। आप दूसरे मजाहिब में देखें, जब इस्लाम आया था उस वक्त भी देख लें और आज तक भी आप देखें दूसरे मजाहिब में क्या है। जिस वक्त के कोई लोग मुसलमान हो गए थे तो उन्होंने किस तरह से उनके साथ सलूक किए थे, कैसे टॉर्चर किए थे। और इसके अलावा भी स्पेन जिस वक्त दूसरों के हाथों में आ गया था तो इन्होंने मुसलमानों के साथ वो जुल्म किए कि तुम लोग अपने दीन से हटो, इस दीन को छोड़ो। और उस वक्त इनको कहा गया था, जाके चेक किया जाता था कि घरों में शराब है कि नहीं। अगर शराब नहीं है इसका मतलब है कि तुम मुसलमान। तो मुसलमान लोग शराब रखने लगे थे अपने घर में सिर्फ दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा ये तो अब इन्होंने हमारे साथ एक चक्कर कर लिया। तो उन्होंने कहा कि अब खिंजीर है कि नहीं। तो बाकायदा उनके घरों पे छापे पड़ते थे और खिंजीर को उनको खिलाया जाता था कि हमारे सामने खा के दिखाओ। यानी इस तरह जो कुफर है ना वो इन ये हथकंडे इस्तेमाल करता है, इस्लाम नहीं। इन्होंने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की स्पेन से। और कई आज भी हैं, उनके आबाओ अजदाद मुसलमान थे और उसके बाद नस्लें फिर कहाँ चली गई इतने जुल्म और जबर के बाद। लेकिन यहाँ पे देखें किसी को ये नहीं कहा गया कि तुम अब इस्लाम लाओ, अब हमारी हुकूमत आ गई है। और जब कोई जगह फतह की जाती है तो वहां के लोगों के साथ फिर क्या सलूक किया जाता है। जिस वक्त के पता होता है कि ये लोग तो हमारे मुखालिफ थे या इन्होंने हमारे खिलाफ जंगें की या ये हमारे दीन के नहीं है, तो क्या उनके साथ सलूक होता है। आज की मुहज्जब दुनिया जो अपने आप को बहुत कहती है ना कि हम तो बहुत मुहज्जब हो गए, पुराने जमाने के लोग तो जाहिल थे, हम तो पता नहीं कितने वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड और बहुत कल्चर्ड लोग हो गए। ये कल्चर्ड लोगों के हाल देखें कि आज जहाँ पे भी किसी और का तसल्लुत होता है फिर वो उन जगहों का हाल क्या करते हैं, वहाँ की औरतों का क्या हाल करते हैं, वहाँ के बच्चों और बूढ़ों का क्या हाल करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन मक्का फतह हुआ, उनको भी अच्छी भली 4 महीने की मोहलत दी गई है। अगर फिर भी नहीं तुम ये बाज आते हो, या तो इस्लाम ले आओ, ठीक है 4 मंथ्स इनफ टाइम है, उस वक्त से देख रहे हो तुम। 4 मंथ्स इसलिए दिया गया, देखिए मुसलमानों के साथ रहेंगे सहेंगे देखेंगे उनको, बड़ी चीजें देख के इंसान को समझ आ जाती है, आगे भी बात आएगी। तो उसके बाद भी अगर कोई ये डिसाइड करता है कि मैंने नहीं इस्लाम लेकर आना, तो फाइन फिर वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि ये जगह तौहीद की। और ये बात समझ आ रही है कि नहीं है, ये बड़ा कोई जुल्म की बात हो रही है कि जब ये बातें को समझे ना कि ये जगह किस लिए आबाद की गई थी, इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे तो शिर्क की गुंजाइश ही नहीं हो सकती। इसको तो उन्होंने बसाया जो तौहीद के बाबाए तौहीद कह सकते हैं, जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तौहीद ही तौहीद थी ना उनकी, तो जिंदगी ही तौहीद थी। वो तो सारा वक्त ही शिर्क के खिलाफ लड़ते रहे। तो अब कहा गया कि अगर ऐसे लोग ये फिर भी यहाँ बाज नहीं आते, यहीं पे रहते हैं, तो फिर यहाँ पे रह नहीं सकते, फिर इनके लिए इनकी सजा कत्ल है। और ये है वो आयत जिसको सिर्फ निकाल के इतना सा कि ये देखें कुरान के अंदर क्या लिखा है। अब आपके सामने कोई ले आए और यहाँ से वो आपको पूछे, ये देखें आपके कुरान में सूरह तौबा में लिखा है, फ़क्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम वखुज़ूहुम वाहसुरूहुम वखुदू लहुम कुल्ल मरसद। तो क्या कहेंगे आप, वो समझ होनी चाहिए। जब हमें नहीं समझ होती ना तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, हाय कुरान ने ये लिख दिया कि मुशरिकों को जहां मिले उनको मारो, उनको पकड़ो, उनको घेराव करो और उनके लिए घात में बैठ जाओ, ये तो बड़ी जालिमाना बात हो गई, अल्लाह माफ करे, नाउज़ बिल्ला। हालांकि ये इस वक्त के बारे में नहीं है, ये आप देखें तो सही कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, पीछे से बात क्या चली आ रही है। 4 महीने हुरमत वाले गुजर जाएं, ये किसकी बात हो रही है, कौन से 4 महीनों की बात हो रही है। तो सीधा सीधा उनसे बात हो रही है, उनको 4 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है और वो आगे उनकी बात कीजिए कि वरना ये सजा है। अब इसको एक जनरल लॉ बना दिया जाए और कहा जाए देखो वो कहते हैं कि जहां ये मिले इनको मारो, ये तो इस्लाम के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा है। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ होनी चाहिए कि ये आयात क्या कह रही हैं और कहां दुनिया के अंदर मुसलमान कहीं मुशरिकों पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। हमें तो ये भी कहा गया कि इस्लामी हुकूमत में कोई जिम्मी रहता है ना, जिम्मी कौन होता है जो गैर मुस्लिम है लेकिन इस्लामी हुकूमत में रहता है, वो टैक्स देता है जैसे दूसरे लोग ज़कात देते हैं उसके ऊपर जिजिया होता है, वो ये टैक्स देता है, तो उसकी भी जान माल इज्जत की हिफाजत का जिम्मा इस्लामी हुकूमत पे है, उसको नहीं मार सकते, उसको कुछ नहीं कह सकते, उसको कत्ल किया जाएगा तो मुसलमान को उसके बदले में कत्ल किया जाएगा। ये बातें हमें पता ही नहीं। तो ये एक जनरल बात नहीं है और इस बात को लेकर बाज दफा यंगस्टर्स को बहकाया जाता है, भड़काया जाता है और उनको कहा जाता है देखो कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है ना, तो अब इनको हमने मारना है तो तुम इसके लिए तैयार हो। बैठे में ऐसे लोग इंटरनेट पे बहुत हैं। तो इन चीजों के समझ जब होगी नहीं सही तो फिर प्रोपोगेंडाज में भी आएंगे और फिर गलत लोगों के हाथों में भी जा सकते हैं। तो कहा गया फिर तुम इनको पकड़ो यानी इनको कैदी बना लो, इनको घेरो, फिर इनके घात में बैठ जाओ और फिर देखें सुभान अल्लाह ये है ये दीन, आगे भी तो कोई पढ़ ले, फा इन ताबू, फिर भी अगर ये तौबा कर ले, फिर भी अगर ये तौबा कर ले, फिर भी यानी तौबा का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, कब से खुला हुआ है, अब तो हुज्जत भी तमाम हो चुकी है, फिर भी तौबा का दरवाजा इनके लिए खोल के रखा गया, अब तो मक्का भी फतह हो गया, अब तो पता भी चल गया कि कौन हक पे था, लेकिन ये फिर भी हर ढीठ बने रहे और 4 महीने भी गुजर गए अब भी, लेकिन अगर ये तौबा कर लेते वा अकामु सलाता वा आतबु सकाता फखल्लू सबीलाहुम, तो इनका रास्ता छोड़ दो। तौबा करने का मतलब ही ये है इस्लाम ले आना, अपनी पिछली रविश को छोड़ देना। तौबा ये नहीं होती कि इंसान अपने रास्ते पे चलता रहे और कहे तौबा अस्तगफार तौबा अस्तगफार। ठीक है, अब यहां से पता चला तौबा है उस रास्ते को छोड़ देना जिसके ऊपर चल रहे थे। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई इस्लाम ले आता है और इस्लाम लाने के बाद वो ये दो काम करता है, कौन से दो काम, नमाज और जकात, तो तब तुम उसका रास्ता छोड़ोगे। सिर्फ एक कोई कलमा पढ़ लेगा तो उस पे नहीं, इसका मतलब ये है कि कलमा पढ़ने के बाद कौन सी चीज है जो किसी के मुसलमान होने की निशानी है, साइन है, किस बात से पता चलेगा कि ये मुसलमान है, कलमा तो पढ़ लिया उसने, कलमा तो मत्थे पे तो नहीं लिखा हुआ कि ये कलमा पढ़ता है, वो नमाज पढ़ ले और जकात दे तो तब उसको मुसलमान समझा जाएगा। इस बात से हमें क्या पता चला कि बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी कंसिडर्ड अ मुस्लिम इज नमाज और ज़कात, ये बेयर मिनिमम है, सबसे कम तरीन मुतालबा या सबसे कम तरीन रिक्वायरमेंट को क्या कहेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट जो है जो कि जिससे आप पता चल जाए, जिससे आपको इस मुसलमान समझा जाएगा, जिसके बाद वो ये है कि कोई नमाज पढ़े और ज़कात दे। देखें अब तो हारे की वो कलमा पढ़ लेता है, वो कहता है कि मैं मुसलमान ही हूँ और उसको मुसलमान समझा ही जाता है, नमाजें क्या कलमे की भी पूरी ना आती हो उसको वजाहत और उसको ना पता हो कलमा भी क्या चीज़ है, कलमा भी पूरा पढ़ना ना आता हो तो तब भी वो अपने आप को मुसलमान ही समझता है क्योंकि मैं मुसलमानों के घर में पैदा हो गया। लेकिन असल में मुसलमान दिल से नहीं कह रही कि दिल से कौन मुसलमान है, तो वो कोई मुनाफिक भी अगर या कोई ऊपर ऊपर से जाहिर करने के लिए भी अगर कोई कलमा पढ़ के नमाज और जकात ये दो काम करना शुरू कर दे तो इस्लामिक स्टेट का काम है कि उसको मुसलमान ही समझे, लोग भी दूसरे उसको मुसलमान ही कहेंगे, क्योंकि हमारे जिम्मे अल्लाह ने ये नहीं लगाया कि लोगों के दिलों के अंदर घुस के देखो कि वो क्या है, ये तो ऐसे ही करने लगी हुई है, ये तो सिर्फ शो के लिए कर रही है, ये तो नमाजें पढ़ती है सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ती है, ये तो हज पे गए हैं सिर्फ दिखाने के लिए गए हैं, इनके उम्रे देखो जरा, बार बार उम्रा कर रहे हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। आपको क्या पता, आपको क्या पता ये दिखावा है या दिल से है। हमें कहा गया आप सिर्फ जाहिर पे मामला करें बस। अगर आप ये वाले एक बात को, हदीस को याद रखेंगे ना, मेरे बहुत काम आई है और बहुत इससे मुझे फायदा होता है कि क्या जरूरत है। हमें जब किसी के दिल का हाल ही नहीं पता तो उस पे एजम्पशंस करके, यानी गुमान करके सिर्फ ये सोचना कि ये देखो ये ऐसा होगा, इसकी नीयत तो ये होगी, इसने तो जरूर ये सोचा होगा, ये तो इसलिए मुझे ये कह रही है कि इसका मतलब तो ये होगा। ये जो चीजें हैं ना, वो हमें नहीं कहा गया कि हम इसमें घुस घुस के देखें। हमें कहा गया आप जाहिर पे मामला करो। अगर आपके साथ जाहिर में कोई अच्छा है बस ठीक है, आप अंदर जाके किसी के देखना ना, हमारी इसकी ताकत है और ना ही हमें इसके बारे में कहा गया। अब क्या पता वो झूठे हो, क्या पता ये ऐसे ही अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ के आ गए हैं। और मुनाफिक भी तो मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते थे, उनके उनको मुसलमान ही समझा गया, ठीक है, क्योंकि वो नमाज पढ़ते थे, जकात देते थे, तो उनको मुसलमान समझा गया। हालांकि वो तो दिल से मुनाफिक थे, लेकिन कहीं नहीं कहा गया कि आप उनको जज करें, पहले बताएं इनमें से कौन कौन से हैं जो सही हैं और कौन से हैं जो मुनाफिक हैं। नहीं, बस वो मुसलमान है, दैट्स इट, यहीं पे बात खत्म हो जाती। तो इसका मतलब मुसलमान कंसिडर वही होगा जो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करे। अगर कोई ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता तो कुरान के मुताबिक वो मुसलमान कंसिडर नहीं होगा, वो मुसलमान नहीं समझा जाएगा। और यहाँ पे लोग कहते हैं हम नमाजें पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, आपको क्या पता हमारे दिल कैसे हैं, हमारे दिल कितने अच्छे हैं। दिल की तो बात ही नहीं हो रही, आपको तो ये कहा गया आप नमाज पढ़ो जकात दो, लेकिन कितने हमारे मुल्कों में मुसलमान जो आज नमाज के पाबंद हैं बताएं। खुद अजानें हो रही हैं बाजार भरे में, दिन चढ़ने लगा है और लोग सोए पड़े हैं, 11-12 बजे उठ रहे हैं। तो ये नमाजें छोड़ना बड़ी हसरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की कड़ियां एक एक करके टूटती चली जाएंगी, जब भी एक कड़ी टूटेगी तो लोग नीचे वाली कड़ी को पकड़ लेंगे। क्या मतलब इसका, ये मतलब नहीं कि इस्लाम को नुकसान पहुंचेगा कोई, ये मतलब नहीं है। मतलब है कि इस्लाम की जो ये चीजें हैं ना, ये लोगों के लोग छोड़ते चले जाएंगे। ये जो इस्लाम के सारे शायर हैं या जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, वो सब लोग छोड़ते चले जाएंगे। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ना, कमी आती जाएगी, डिटेरियरेशन होगी लोगों के इस्लाम में, मयार कम से कम, स्टैंडर्ड्स ना कम से कम ही होते जाएंगे, गिरते जाएंगे स्टैंडर्ड। अब हर कोई मुसलमान है जी, चाहे वो कुछ भी ना करता हो। यकीन करें कई लोगों को कलमा भी नहीं आता, हमारे मुल्कों में ऐसे भी जहालत है कि उनको कलमा भी नहीं आता, लेकिन वो भी मुसलमान, वो भी कहता है मैं मुसलमान हूँ। किसी को नमाज आती ही नहीं है, नमाज पढ़नी क्या तो बाद की बात, वो भी कहते हैं हम मुसलमान हैं। कहते हैं क्या हुआ फिर, हमने अगर ये कर लिया तो क्या मुसलमान नहीं हो, अगर मैंने वो कर लिया तो क्या मुसलमान नहीं। तो पहले तो कितनी चीजें थी जिनको सारियों को पकड़ना और जिनके ऊपर लोग कारबंद रहते थे, तो अब उसके बाद आहिस्ता 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 चीजें हाथों से छूटती चली गई। और बेयर मिनिमम मैंने आपको बताया नमाज है, सबसे जो लास्ट चीज है वो नमाज है, ये भी हाथ से गई तो इस्लाम गया। जकात, नमाज और जकात, तो ये जो हदीस है ना, इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इस्लाम की कड़ियां इस तरह से एक एक कड़ी टूटती जाएगी, लोग नीचे वाली कड़ी को पकड़ लेंगे। तो फरमाया जो पहली कड़ी टूटेगी ना, वो ये है कि अल्लाह का कानून, उसकी जगह गैर अल्लाह का कानून आ जाएगा। यानी अल्लाह ताला का कानून चलना था ना, लेकिन वो कानून चला जाएगा और गैर अल्लाह का आ जाएगा। और आखिरी कड़ी, ये पहली टूटेगी और जो आखिरी कड़ी टूटेगी जिसको लोग छोड़ेंगे ना, वो है नमाज। यानी सबसे निचला दर्जा जो लास्ट था ना, जिसके बाद तो फिर कुछ है ही नहीं है, वो सबसे निचला था, वो नमाज होगी। उसको आज वो कड़ी हाथ से चली गई, सोचे कि जवाल की क्या इंतहा आ गई है हमारे ऊपर, फिर भी हम कहते हैं हम कितने अच्छे मुसलमान हैं ना। ना नमाज का पता ना ज़कात देने का। बच्चियों को सिखाया नहीं जाता कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे पास इतना जेवर है बेटी, अब तुम्हारे ऊपर ज़कात की जिम्मेदारी होगी। या बेटे को कितना सिखाया जाता है कि बेटा तुम जॉब पे लग गए हो ना, और तुम्हारे पास जब इतने पैसे जमा हो जाएंगे तो तुम्हारे पास ज़कात होगी। किस कौन बताता है? कहीं जाके उनको समझ आती है, किसी एज में जाके तो फिर सोचते हैं भाई हमने तो कभी ज़कात ही नहीं दी, माँ बाप देते रहे थे उस वक्त। जब हैंड ओवर करने लगे उनको चीजें तो उनको ज़कात का भी तो बताएं। तो तब तुम छोड़ दो उनका रास्ता, यानी तब ना उनको पकड़ना है, ना उनको घेरना है, ना उनको मारना है, कुछ नहीं करना। अगर वो इस्लाम ले आते हैं, यानी तौबा का मतलब क्या, इस्लाम ले आते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो ज़कात देते हैं, तो फिर उनका रास्ता छोड़ दो। इन अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला देख वाकई बख्शने वाला और मेहरबान है कि ऐसे लोगों को भी बख्श देता है जिन्होंने इतने पिछले गुनाह किए और जिन्होंने कैसे कैसे काम किए, कैसी इस्लाम की दुश्मनी की, और उसके बाद वो तौबा करके जब आ जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देता है उनकी पिछली सारी जिंदगी के गुनाह। अच्छा, यही आयत वो है जिस पे जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वो खलीफा बने थे तो उनके दौर में कुछ लोग थे जिन्होंने कह दिया था कि हम नहीं ज़कात को मानते और ना ही हमने ज़कात देनी है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके लिए, उनके खिलाफ जंग के लिए जब खड़े हुए तो बात ये हुई कि ओहो ये तो मुसलमान है, इनके साथ आप कैसे लड़ सकते हैं। तो यही आयत उन्होंने फिर इसको बुनियाद बनाया था कि जो ज़कात नहीं देता ना वो तो फिर मुसलमान ही नहीं है। और सहाबा कराम आमाल में से किसी चीज के छोड़ने को कुफर नहीं समझते थे सिवाय नमाज के। कहते थे अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी तो कुफर में चला गया, वो कुफर समझते थे वो। और नमाज और ज़कात में कोई फर्क नहीं, आप देखिए पूरे कुरान में अकीमु सलावात ज़का ये कितनी जगह पे आया, इकट्ठे आते हैं, इससे इसकी अहमियत का पता चलता है।